अध्याय 17, शीर्षक मध्यकालीन संत और भक्त, स्त्री और स्त्री अस्मिता से जुड़े सवाल। मध्ययुग सामंती समाज व्यवस्था का युग है। सामंती मूल्यों, मर्यादाओं, आदर्शों और विचारों के कठोर से कठोरतर होते जाने का काल है। यह चली आ रही सामाजिक संरचना के भी अधिक से अधिक अनुदार होने, उसकी अतिरिक्त कठोरता का भी समय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चले आ रहे सनातन धर्म में आने वाली इस अतिरिक्त कठोरता का संबंध भारत में इस्लामी मजहब के प्रवेश को माना है। उनके अनुसार इस्लाम का भारत में प्रवेश इतना आकस्मिक और अकल्पनीय था कि भारतीय मनीषा को एक जबरदस्त धक्का लगा। इसी के परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म मत को इस्लामी मजहब के प्रदूषण से बचाने के लिए कठोर होना पड़ा। कठोरता या कट्टरता किसी भी धर्म या मजहब की हो, उसका सबसे पहला शिकार स्त्री होती है। मध्ययुग में सनातन धर्म या हिंदू धर्म मत की अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए जिस कठोर ढांचे की जरूरत पड़ी, उसके परिणाम या दुष्परिणाम सबसे अधिक स्त्री जाति को ही भोगने पड़े। पैराग्राफ चेंज। बहरहाल इस चर्चा में प्रसंगातर न लाते हुए इस बात को देखें कि मध्ययुग, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत में और हिंदी क्षेत्र में भक्ति की रचनाओं से संबंध है, भक्ति की रचनाओं के इस काल में जिसे भक्ति काल की संज्ञा दी गई है, इन रचनाओं से जुड़े संतों और भक्तों का चली आ रही धर्मशास्त्र अनुमोदित सामाजिक संरचना में स्त्री की जो नियति दी गई है, उसके बारे में नजरिया क्या है और कैसा है। पृष्ठ संख्या 263। मध्ययुग में भक्ति की एक व्यापक लहर जो समूचे उत्तर में फैली और भक्ति की एक स्रोत स्वनी का रूप धारण कर 300 सालों से भी ऊपर जीवित रही, भक्ति के इस ज्वार को भक्ति आंदोलन का नाम भी दिया गया। इतिहासकारों, समाज तथा संस्कृतविदों ने भक्ति के इस आंदोलन को मध्ययुग की एक क्रांतिकारी घटना माना है। हिंदी क्षेत्र में भक्ति की यह स्रोत स्वनी दो धाराओं में क्रमशः वही प्रारंभ में निर्गुण भक्ति के रूप में और उसके उपरांत सगुण भक्ति के रूप में। भारत के अन्य प्रदेशों में भक्ति का ऐसा विभाजन नहीं हुआ। यह विभाजन खासतौर से हिंदी क्षेत्र की विशेषता है। निर्गुण और सगुण भक्ति में बुनियादी अंतर यह है कि जहां निर्गुण भक्ति में एकेश्वरवादी विचार को मान्यता मिली, अवतारवाद को नकारा गया, वहां सगुण भक्ति में विष्णु के कृष्ण और राम जैसे अवतारों की केंद्रीयता में वैष्णव भक्ति का विकास हुआ। यही नहीं, निर्गुण पंथ के तहत चली आ रही चिंतन परंपरा के अनेक पहलुओं, खासतौर से उसके समाज दर्शन से जुड़ी हुई वर्ण व्यवस्था, धार्मिक पाखंडों आदि को पूर्णतया अमान्य किया गया। वहां सगुण भक्ति के अंतर्गत अपने अपने ढंग से उनका स्वीकार है। सगुण भक्ति के आचार्यों ने उपासना तथा भक्ति के क्षेत्र में अवश्य सवर्ण और असवर्ण के स्त्री पुरुष के भेद को अमान्य करने की बात की, परंतु समाज के स्तर पर जैसा हमने अभी कहा है, सामाजिक संरचना की हिमायत ही की गई। पैराग्राफ चेंज। बहरहाल दिगर सवालों को छोड़ते हुए अब हम स्त्री और स्त्री अस्मिता से जुड़े सवालों पर भक्ति काल के निर्गुण सगुण संत भक्तों के नजरिए की परीक्षा करना चाहेंगे। उनके अलावा इस्लामी मजहब के भीतर से उदार मानसिकता के जिस सूफी मत का उदय हुआ, उसके प्रतिनिधि रूप में मध्ययुग के सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना को भी अपने विचार के दायरे में लाना चाहेंगे। संत या साधक के रूप में जिनकी हैसियत सूरदास या तुलसीदास से कमतर नहीं है, हमारी चिंता के दायरे में मध्ययुग के अतिशय ख्यात श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा भी आएंगी। स्वयं स्त्री होने के नाते भक्तिकालीन स्त्री विमर्श में जिनकी उपस्थिति का अपना एक महत्व है। पैराग्राफ चेंज। हिंदी क्षेत्र में जिस निर्गुण पंथ के धूमधाम से चल निकलने की बात आचार्य शुक्ल ने की है, उसे विचार के कुछ बिंदुओं पर असहमति और विरोध की सिद्धनाथों की परंपरा से प्रभावित आंदोलन के रूप में भी देखा गया है। सिद्धों और नाथों की साधना पद्धति और भक्ति दार्शनिक विचारों पर आचार्य शुक्ल और कुछ दूसरे विद्वानों ने विपरीत टिप्पणियां की है। हम इस बिंदु पर चर्चा करके प्रसंगातर नहीं करना चाहेंगे, किंतु जो बात निर्विवाद है वह यह कि कि सिद्धों और नाथों दोनों ने चली आ रही वैदिक सनातनी चिंतन परंपरा की तमाम बातों के प्रति अपनी तीव्र असहमति व्यक्त की है। पृष्ठ संख्या 264, खास तौर से वर्ण व्यवस्था के प्रति एवं तमाम धार्मिक बाह्याचारों के प्रति उनका विरोध उग्र होकर सामने आया है। इतना तो आचार्य शुक्ल ने भी माना है कि उनका लक्ष्य उपासना के एक ऐसे मार्ग की खोज था जिस पर आदमी वर्ण वर्ण धर्म जाति और संप्रदायगत भेदों से परे साथ साथ चल सके, अनावश्यक कर्मकांडी पाखंडों से मुक्त होकर। पैराग्राफ चेंज। कबीर के निर्गुण पंथ को सिद्धों और नाथों की असहमति की इस परंपरा से जोड़कर देखा गया। हम जानते हैं कि कबीर और उनके निर्गुण पंथ का जो महत्व हमारे लिए आज है, उसका कारण निर्गुण पंथ के दार्शनिक विचार, संतों की साधना पद्धति, उनकी भक्ति अथवा उनका अध्यात्म चिंतन नहीं, उनका वह समाज दर्शन है जिसमें समाज में वर्ण जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर आदमी और आदमी के भेद करने वाली मानसिकता को नकारा गया है। थोथे धार्मिक बायाचरों की भर्सना की गई है तथा मनुष्य सत्य को सारे सत्यों से बड़ा माना गया है। अपने समाज दर्शन के इन्हीं बिंदुओं के नाते कबीर हमारे समकालीन भी बनते हैं। कबीर का चले आ रहे सामाजिक विधान में से तमाम कुछ का यह अस्वीकार ही हमारे अपने समय से उन्हें जोड़ता है। परंतु कबीर को समग्रता में देखे तो अस्वीकार के इस पहलू के साथ चले आ रहे में से तमाम कुछ का जाने अनजाने का एक स्वीकार भी उनमें से है जो उन्हें मध्ययुग में सीमित करता है। इस स्वीकार में कबीर का अध्यात्म, ब्रह्म जीव माया का प्रपंच, उनका हठ योग, अनहद, उनकी भक्ति तथा नियतिवाद, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म, कर्मफल, जीवन की नश्वरता जैसी तमाम बातें हैं जो संस्कार बनकर उनकी सोच में घुली मिली है। यही कबीर का अंतर विरोध है जिसे प्रायः नज़रअंदाज किया जाता है। स्वीकार के इस पहलू का ही अभिन्न अंग है स्त्री के बारे में कबीर का दृष्टिकोण, जिसके तहत कबीर स्त्री के बारे में धर्मशास्त्र विहित दृष्टिकोण का समर्थन करते दिखाई देते हैं। हम अपने मुख्य विषय पर आए और देखें कि मध्यकाल की हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा में सिद्धों नाथों से लेकर मीरा तक स्त्री के बारे में संतों, भक्तों और साधकों का दृष्टिकोण क्या है। कबीर के निर्गुण पंथ में कबीर के अपने कहे हुए कि जो साक्ष्य हैं, स्त्री को साधना के पथ में बाधा माना गया है, उसे महाठगिनी न जाने कितने नामों से पुकारा गया है, उसे परमात्मा के मार्ग से जीवात्मा को भरमाने भटकाने वाली कहा गया है और साधक को उसकी छाया तक से दूर रहने की सलाह दी गई है। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, नारी महाविकार है। पृष्ठ संख्या 265, वह अपने मोहजाल में जीव को बांध लेती है और सांसारिक चक्करों में उसे उलझाए रखती है। जाहिर है कि कबीर पर नारी संबंधी परंपरागत दृष्टिकोण हावी है और वे उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। उनके विवेक ने उन्हें संवर्ण और संवर्ण के भेद को जहां अमान्य करने का साहस दिया, वहां स्त्री पुरुष के बीच के भेद को वे अमान्य नहीं कर सके। उनके विवेक पर उनके संस्कार विजयी हुए, यही कबीर के चिंतन का द्वित्व है। पैराग्राफ चेंज। कबीर के पथ में दलील दी जाती है कि स्त्री के संबंध की जो निंदा कबीर में है, उसका लक्ष्य स्त्री जाति नहीं, स्वर्णी, कुटला, चरित्रहीन नारी या कामनी है। सती तथा पतिव्रता नारी को कबीर ने मान दिया है, आदर्श माना है, परंतु यह सब कहने की बात है। स्वर्णी, कुटला, अधम नारी की कबीर की पहचान वही है जिसका हवाला धर्मशास्त्र देते हैं। सती तथा पतिव्रता नारी का उनका आदर्श भी शास्त्र का ही अनुगमन करता है। बुनियादी तथ्य यही है कि कबीर के स्त्री संबंधी विचार परंपरागत और रूढ़ है। इस बिंदु पर वे परंपरा से अलग नहीं हो पाए हैं। समकालीन स्त्री विमर्श में उनकी हैसियत स्त्री के पक्ष में नहीं, प्रतिपक्ष में है। जहाँ तक ज्ञात है, निर्गुण पंथ में नानक अकेले संत है जिनके यहाँ नारी के वजूद को लेकर मान और सम्मान है, उसे पूरी सम्मान भावना के साथ याद किया गया है। नानक के अनुसार स्त्री के द्वारा ही हम गर्भ में धारण किए जाते हैं और उसी से जन्म लेते हैं, उसी से मंगनी होती है, उसी से विवाह होता है। स्त्री से हमारी मैत्री होती है, उसी का क्रम चलता रहता है। एक स्त्री के मर जाने पर दूसरी स्त्री खोजनी पड़ती है। स्त्री हमें बंधन में रखती है, फिर हम उस स्त्री को मंद क्यों कहें जिससे महान पुरुष जन्म लेते हैं। जैसे भंडी जन्मी से भंडी निम्मिये भंडी मंगड़ू बियाहू, भंडहु होवे दो सती भंडहु चले राहु, भंडु मुआ भंडु भालिये भंडी होने बंधातु, सो किन्न मंदा आखिये जीतु जब महिर राजानु। निर्गुण भक्ति के तहत ही सूफी संत मलिक मोहम्मद जासी हमारी चर्चा के दायरे में आते हैं। कबीर के संबंध में आचार्य शुक्ल अपने आग्रहों पूर्वाग्रहों के चलते जितने अनुदार है जैसे के संबंध में वे उतने ही उदार हैं। विशेष रूप से उनकी सहृदयता के नाते जिस स्तर पर धार्मिक आग्रहों से हटकर उन्होंने अपनी मानवीय सदाशयता को ही वरीयता दी है। पृष्ठ संख्या 266। आचार्य शुक्ल ने जायसी को सूफी संत तथा साधक मानते हुए उनके द्वारा कही गई रतनसेन पद्मावती की कथा को समासोक्ति माना है। लौकिक अर्थ से आगे उसके आध्यात्मिक आशयों को भी मुख्य कहा है। विजय देवनारायण शाही ने भी जायसी पर लिखा है और प्रचलित मत से हटते हुए संत तथा साधक के बजाय उनके कवि रूप को ही मुख्य कहा है। रतन सेन पद्मावती की उनके द्वारा कही गई कथा के आध्यात्मिक व्यंजना को तहजीर न देते हुए उन्होंने लिखा है कि जायसी मध्यकाल के एकमात्र कवि हैं जो अपने समय के मध्यकाल के इतिहास या कहें उस इतिहास की त्रासदी से मुठभेड़ करते हैं, उसे हमारे समक्ष मूर्त करते हैं। पैराग्राफ चेंज। जायसी के काव्य पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन की दो रानियां हैं, एक उसकी परंपरागत व्याहता नागमती, दूसरी सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की बेटी पद्मावती, जिसके रूप की ख्याति सुनकर वह सिंघल द्वीप जाता है और पद्मावती को अपने प्रेम के बल पर जीत कर चित्तौड़ लाता है। इसी पद्मावती के रूप को ख्याति सुनकर उसे पाने की हवस में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ जाकर पहले रतन सेन को भरमा कर पद्मावती को देखता है, फिर छल से रतन सेन को बंदी बनाकर पद्मावती के एवज में उसे मुक्त करने की बात करता है। पद्मावती चित्तौड़ में अपने सरदारों से मंत्रणा करती है और छल का उत्तर छल से देती हुई अपने पति को बंदी गृह से मुक्त करती है। खींचकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ को जीत लेता है। रतन सेन पहले ही देवपाल से युद्ध करते हुए मारा जाता है। फलतः राजपूती प्रथा के अनुसार उसकी दोनों पत्नियां नागमती और पद्मावती उसकी चिता में उसके साथ सती हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय के उपरांत जब किले पर पहुंचता है, उसे पद्मावती तो नहीं उसकी राख मिलती है। वह राख को उठाकर फिर उसे वही धरती पर फेंक देता है। छार उठाई लिन्न एक मुट्ठी दिन्नी डारी पीरिथमी झूठी। यह पद्मावत प्रबंध काव्य की परिसमाप्ति है। पद्मावत काव्य की चर्चा न करके हम अपने विवेच्य विषयक स्त्री के बारे में जैसे कि मनोभूमि में झांकना चाहेंगे। स्त्री विमर्श का संबंध हमारी सामाजिक संरचना में स्त्री को दी गई वह पराधीनता की नियति है जो उसकी स्वतंत्र अस्मिता को नकारती है और उसकी पर निर्भरता पर आधारित है। जाहिर है कि जायसी के सामने स्त्री नियति कोई मुद्दा नहीं है। उनका काव्य प्रेम के एक आख्यान से जुड़ा है जो काफी कुछ लोक प्रसिद्ध है। पृष्ठ संख्या 267। परंतु प्रकारांतर से स्त्री के बारे में जैसे कि अपनी मनोभूमि उसमें अवश्य प्रतिबिंबित होती है। जैसी गवई गांव के संस्कारों से जुड़े कवि फकीर थे। स्त्री जीवन के जो बिंब उनकी कथा के भीतर से उभरे हैं, गवई गांव के जीवन से जुड़ी स्त्री बिंब है, परंपरा अनुमोदित है। नागमती के जिस वियोग वर्णन पर आचार्य शुक्ल बहुत रिझे हैं, उनकी दृष्टि में परंपरित होते हुए वह इस नाते महत्वपूर्ण है कि नागमती को उन्होंने चित्तौड़ की वियोगिनी रानी के रूप में नहीं, एक साधारण ग्राम नारी के रूप में ही उसके कष्ट क्लेश के साथ प्रस्तुत किया है। रतन सेन जब पद्मावती को लेकर चित्तौड़ लौटता है तो राजमहल के कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जिनमें नागमती पद्मावती की सौतिया डाह तथा एकाध अवसर पर दोनों की नोकझोंक भी उसी तरह चित्रित है। गांव के साधारण गृहस्थ जीवन में जो एक आम अनुभव के रूप में जाना पहचाना जाता है। रतन सेन की बूढ़ी माँ तथा राजपूत किशोर वय सरदार बादल की माँ के जो बिंब कथा में आए हैं परंपरागत वत्सला माताओं के बिंब है, अपनी मनोभूमि में गंवई गांव के विचारों संस्कारों से दीपित। कहीं कुछ ऐसा विशेष नहीं है जो जायसी को स्त्री विमर्श जैसे मुद्दे से जोड़ सके।